ओम शांति। चेतना को प्रकृति के मध्य में स्थित करेंगे। मैं देह के भव्य भाल पर विराजमान, मैं एक चेतना की चमकती हुई किरण, प्रकृति के मध्य में विराजमान, मैं एक तेजस्वी आत्मा हूं। शरीर संपूर्ण स्थिर, सभी हलचल समाप्त, एक ज्योतिर्मयी किरण, एक तेजोमयी कण, एक प्रकाश का बिंदु, मैं एक अति तेजस्वी आत्मा हूं। संपूर्ण मन सभी विस्तार मुझ बिंदु में समा चुके हैं। सर्व प्रवृत्तियां मुझ आत्मा में समेट गई है। यह व्यक्त देह और यह संसार सारी रस्सियां टूट चुकी है, मैं आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में कर्मातीत स्थिति के इस अंतिम वाहन में बैठी हूं। देह को यही छोड़ सूक्ष्म शरीर सहित जा रही हूं, पर इस संसार से परे तत्वों से पार सूक्ष्म वतन में हूं। उड़न आसन में स्थित अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख हूं। देख रही हूं उसको, उन रूहानी नैनों को, अनंत प्रेम की धाराएं बह रही है। बाबा की इस दृष्टि से मुझे बाप दादा स्वयं वरदान दे रहे हैं। बच्चे निर्विघ्न बाबा, अनुभव की खान बाबा, विजयी बाबा, संपूर्ण पवित्र बाबा, यह वरदानी दृष्टि यह अविरल शक्तियों की धारा है। मैं फरिश्ता, अव्यक्त तिथि में मैं आत्मा, नीचे उतरती हूं और नीचे पुनः इस व्यक्त संसार में और इस व्यक्त देह में कुटी के मध्य विराजमान मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले चीन के देश में तीन संत रहते थे जो कि आज भी वहां पर प्रसिद्ध है, और उनका नाम था द थ्री लाफिंग सेंट्स। वो तीन हंसते हुए संत, उनकी आदत यह थी कि जहां भी जाते थे वो प्रवचन नहीं करते थे, केवल हंसते थे। बाजार में चले जाते थे तो हंसते थे, किसी के घर चले जाते तो हंसते थे, बस हंसना ही उनका प्रवचन था, हंसना ही उनका व्याख्यान था। अगर बाजार चले जाए जहां पर लोग आए हुए हैं। किसी के मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, मद है, मत्सर है, काम है, क्रोध है, लोभ है, चाहे किसी भी प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति उस सभा में हो जहां पर ये तीन लोग चले जाते थे, वहां पर हंसी की एक लहर फैलती थी, क्योंकि वो इतना हंसते थे, लोग पूछते थे तुम हंस क्यों रहे हो, कारण क्या है, वो कारण न बताते, केवल हंसते और इतना हंसते, इतना हंसते कि जो पूछने वाला है वो भी हंसना चालू कर देता। लोगों ने उन्हें नाम ही दिया द थ्री लाफिंग सेंट्स। घर घर में जाते, शहर शहर में जाते, गांव गांव में जाते और क्या करते, केवल हंसते। उनका जीवन हंसना था, हंसते और गाते और नृत्य करते। और एक दिन ऐसा हुआ कि इन तीनों में से एक की मृत्यु हो गई, तो लोगों को लगा अब देखेंगे ये लोग क्या करते हैं, जो बचे हुए दो है, क्या अब भी वह गाएंगे, क्या अब भी वह नाचेंगे, क्या अब भी वह हंसेंगे। तो पाते हैं कि जो दो बचे हुए हैं वो अब भी गा रहे हैं, अब भी झूम रहे हैं, अब भी नाच रहे हैं। आश्चर्य होता है लोगों को, पूछते हैं क्या अब भी उत्सव ही मनाओगे। वो कहते हैं क्यों नहीं, जिस व्यक्ति के साथ हम रहे, जब हम साथ थे तब साथ में नाचते थे, गाते थे और झूमते थे, क्या उसके जाने के बाद वो सब करना बंद कर दें। तो लोग कहते हैं कि अब उसका जो शरीर है, मृत शरीर, उसको जलाना चाहिए, उससे पहले उसका जो शरीर है उसका अच्छे से उसकी स्नान कराना चाहिए। तो वो दो फकीर कहते हैं कि नहीं, जाते वक्त उस एक फकीर यह कह गया कि मुझे जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो मुझे ऐसे ही जिन वस्त्रों में हूं उन्हीं वस्त्रों के साथ अग्नि को समर्पित कर देना, और ये उसकी अंतिम इच्छा थी। तो उसी वस्त्रों के साथ उसे अग्नि पर चढ़ाया जाता है और वातावरण में एक दुख होता है, क्योंकि लोगों के मन में ये भाव तो होता ही है, ऐसा अच्छा व्यक्ति जिसने कितनों को सुख दिया वो चला गया। और अचानक द लास्ट ट्रिक, जाते जाते उस संत ने एक अंतिम चाल कहो ऐसी एक बात कर दी कि वो होते ही चिताओं पर अग्नि लगाई गई और अग्नि की लपटें उठने लगी, और अचानक से आवाजें होने लगती है। मरते वक्त उस व्यक्ति ने अपने शरीर के अंदर बहुत सारे फटाके लगा दिए गया था, और जैसे ही अग्नि जलती है वो फटाके फूटने लगते हैं, लोगों को आश्चर्य होता है और फिर सभी फिर से हंसने लगते हैं। हंसी ऐसी फैलती है कि जितने लोग उस मरघट में, उस शमशान घाट में आए थे, सभी हंसते हंसते लग जाते हैं। और लोग कहते हैं यह व्यक्ति तो दिन भर जीवन भर सबको हंसाता रहा और जाते समय भी सबको हंसाते हुए गया। आज की अव्यक्त मुरली सभी ने पढ़ी है या सुनी है। बाबा ने एक जगह कहा है, जाना तो है परंतु कैसे जाओ, समाप्ति समारोह मना कर जाओ, मरण समारोह जैसे वो लोग संसार के लोग। कुछ लोग जाने से पहले पहले ही अपना संस्कार कर देते हैं, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दुख होता है कोई यदि शरीर छोड़ता है तो कुछ लोग पहले ही यह घोषणा कर देते कि हम जा रहे हैं। तो तुम्हारे लिए भी, तुम्हारा जाना कब हो, अभी, देह को छोड़ने से पहले ही क्या हो जाए, समारोह हो जाए, मृत्यु का समारोह हो जाए, मरण का समारोह हो जाए। भारत में भी और विदेश में भी कई जगह पर, जैसे अफ्रीका में यदि कोई शरीर छोड़ता है, कहीं कहीं पर वहां पर उत्सव मनाते हैं। क्या करते हैं? उत्सव मनाते हैं। मरने वाला भी कभी कभी बता के जाता है, मैं जब जाऊंगा तो ये भोग लगाना, मैं जब जाऊंगा तो ये वाला मेरा जो फेवरेट संगीत है, गीत है, उसको बजाना। पंजाब में भी कहीं कहीं पर जब व्यक्ति लंबे समय तक जीता है तो जब शव यात्रा निकलती है तो जवान लोग सूखे मेवे और मिठाइयां फेंकते हैं, इस आश के साथ कि हमें भी ऐसी लंबी आयु प्राप्त हो। तो आज की मुरली में बाबा ने एक सुंदर बात यह कही है कि क्या करो? उत्सव मनाओ। क्या करो? पहले ही जैसे वो लोग अपना संस्कार कर देते हैं, तुम भी कर दो। उसी तरह किसी देश में एक सूफी संत था, उसके मरने का समय करीब आया और जैसे ही मरने का समय करीब आया और चिकित्सकों ने कह दिया कि अब थोड़े ही समय में तुम्हारे प्राण तन से निकल जाएंगे, तो वो चिल्लाने लगा और कहने लगा अपने शिष्यों से, मेरे जूते कहाँ हैं? मेरे जूते फटाफट ले आओ, मुझे जल्दी जाना है। शिष्य कहने लगे, अभी कहाँ जाना है, आप तो बस अब जाने ही वाले हो, देह से ही निकलने वाले हो, फिर ये हड़बड़ी कैसी? वो कहता है कि नहीं, मेरे जूते लाओ, मुझे जल्दी जाना है। फटाफट उसके जूते उसे दिए जाते हैं और वो भागता है कुदाली लेकर शमशान घाट की ओर, और वहां पहुंचकर, उस मरघट में पहुंचकर अपनी कब्र खोदने लगता है। शिष्य कहते, ये कर क्या रहे हो आप? वो कहता है कि मैं अपनी कब्र खुद ही खोदूंगा, किसी पर भी बोझ ना हो। मनुष्य की एक बहुत बुरी आदत है, जीता है तो किसी के सिर पे चढ़कर और मरता है तब भी किसी के कंधों पर चढ़कर मरता है। मुझे ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है, वेरी बैड हैबिट। मैं अपनी कब्र खुद खोदूंगा। और वो जाता है और कब्र खोदता है और अंदर जाकर लेटता है और शरीर छोड़ देता है। उसका बस चलता तो शायद मिट्टी भी वही फेंकता। ऐसा मरण, ऐसी प्रक्रिया इस देह से जाने की। तो आज की मुरली में कौन किसको देख रहा है? क्या करने आए हैं बाप दादा? क्या करने आए हैं? कौन आया है? दूर देश में रहने वाला, वह जो इस संसार में नहीं रहता, वह जो सुदूर परम धाम में रहता है, वह आया है। और क्या करने आया है? हमें भी वहीं का निवासी बनाने, उसी दूर देश का निवासी बनाने वो आया है, इस देह में, इस साकार तन में और इस साकार दुनिया में। और कहां से आया है? उस दूर देश से। क्या करने आया है? हमें भी उसी दूर देश का निवासी बनाने। और हम सब कौन है? बाबा ने कहा है मुरली में, क्या तैयारियां हो गई है? मैं तो लेने आया हूं, क्या तैयारी हो चुकी है? क्या कहेंगे? अभी अभी भगवान यहां आ जाए। ये मुरली इसी मेडिटेशन हॉल में चली है जहां हम अभी बैठे हैं, यहीं पर बाबा बैठे थे और यहीं पर बैठकर बाबा पूछ रहे थे, क्या एक सेकंड में जाने के लिए तैयार हो? क्या ऐसी तैयारी हो चुकी है? तो क्या उत्तर है? किस किस की तैयारी हो गई है? कि फोन करना है किसी को या बताना है किसी को कि हम जा रहे हैं, पीछे संभाल लेना, पहुंच गए हैं ठीक ठाक पर अभी यहां से ही सीधा ऊपर जा रहे हैं। बाबा ने कहा, संसार में वो जो प्रेसिडेंट होता है, संसार में वो जो राजा होता है, यदि कहीं पर युद्ध हो जाए तो उसके भी तैयारी कराई जाती है कि उस देश से उसे बाहर निकाला जाता है, ताकि वो क्या ना बन जाए? जेल बर्ड ना बन जाए। यदि उसे निकालने वाला कोई ना हो तो वो खुद निकलता है, खुद युक्ति से अल्पकाल की आत्माएं, अल्पकाल के अधिकार वाली आत्माएं ऐसी तैयारियां करके रखती है अपने छूटने की। तुमने क्या तैयारी कर रखी है? दिखाया है छत्रपति शिवाजी जब 50वीं जन्मगांठ औरंगजेब की थी और उन्हें आगरा बुलाया गया था, तो वहां पर ही नजर कैद कर दिया था 1666 जून। 3 मास तक ऐसे ही रखा। ये नहीं कहा कि बंद कर रहे, बंदी कर रहे, परंतु उनका मंसूबा कहो, उनकी जो योजना थी वो यह थी कि शिवाजी को मार दिया जाए। तो शिवाजी और उसका 9 साल का बेटा उसी किले में बंद हो जाते और हजारों लोग सिपाही उनके तरफ ध्यान देते हुए, उस चाक चौबंद व्यवस्था से भी वो छूट निकलते हैं। क्योंकि अगर नहीं छूटते तो बाबा के शब्दों में जेल बर्ड बन जाते और वहां से छूट निकलते हैं मिठाइयों के डब्बों में। तो बाबा कह रहे हैं वैसे उस देश का कोई प्रेसिडेंट हो और वो युद्ध हो जाए तो उसे रवाना कर दिया जाता है, वैसे ही तुमने क्या तैयारी की है जाने की। तो आज हम इन्हीं तैयारियों की चर्चा करेंगे। तो आज की मुरली में ऐसी 7 तैयारियों का वर्णन है, ऐसी 7 महत्वपूर्ण बातें जो कि होनी चाहिए। जब तक ये 7 बातें नहीं, तब तक हमारी तैयारी हुई नहीं है। इससे पहले कि हम उन तैयारियों की चर्चा करें, इस मुरली को हम एक दूसरे ढंग से सुनाने चाहेंगे। मिडल ईस्ट में सभी ने सुना होगा अरेबियन नाइट्स की कहानियां। उन अरेबियन नाइट्स के कहानियों में एक कहानी आती है सिंधबाद की। सुना है सिंधबाद? कौन था वो? सेलर था सिंधबाद द सेलर, एक जहाजी था सिंधबाद। उसने ऐसी बहुत सी यात्राएं की थी और एक एक यात्रा जो थी वो खतरनाक थी। तो वह मिडल ईस्ट का बगदाद का रहने वाला सिंधबाद, इराक की राजधानी बगदाद, वहां की कहानी से शुरू करते हैं। बाबा ने आज की मुरली में कहा ऐसी ये 7 बातें चाहिए। अगर ये तैयारी है तो तुम मेरे साथ चल सकोगे, अगर ऐसी तैयारियां नहीं है तो तुम नहीं चल सकोगे। वो सिंधबाद जहाजी दिखाया है, उसकी ऐसी 7 यात्राएं हैं, समुद्र की 7 यात्राएं, एक एक यात्रा बेजोड़ है, एक एक सिंधबाद की वह यात्रा अद्वितीय है। उस एक एक यात्रा में वो इतनी सारे संकटों का और मुसीबतों का सामना करता है। तो सिंधबाद दिखाया है शुरुआत में, सिंधबाद बूढ़ा है, बैठा हुआ है, उसका एक नौकर है जिसका नाम है हिंदबाद, या कोई कोई कहते हैं उस नौकर का भी नाम है सिंधबाद। वो कहता है कि भगवान का कैसा ये अन्याय है, मैंने ऐसे कौन सा पाप किया कि मुझे इतना गरीब बनाया और आपको इतना अमीर बनाया, आप इतनी विशाल संपत्ति को भोग रहे हो, क्या कारण है? तो सिंधबाद उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है ये मैंने ऐसे ही पा लिया, तो मैं तुम्हें आज मेरे जीवन की वो सारी समुद्र की यात्राओं का वर्णन करूंगा तुम्हारे सामने। तो ऐसी वो 7 यात्राएं हैं, मध्य पूर्व की, मिडल ईस्ट की ये यात्राएं हैं। उसने ये यात्राएं बगदाद में जो था वहां से निकलकर हिंद महासागर, हिंदुस्तान और बगदाद के बीच हिंद महासागर है, उसमें वो सारी यात्राएं की। तो सबसे पहली यात्रा, और हर यात्रा में वो सफल होकर घर आया वापस। तो हिंदवाद सिंधवाद हिंदवाद को सुनाता है, सुनो हिंदवाद मेरी पहली यात्रा। पहली यात्रा में वो निकलता है, वो जवान था उस समय, बहुत पैसे थे परंतु सब उड़ा दिए और फिर कंगाल हो गया था, पैसे नहीं थे, थोड़े से पैसे से सामान खरीदता है, एक जहाज पर लादता है और पहली यात्रा में निकलता है। उस पहली यात्रा में का संबंध है आज की मुरली के पहली तैयारी से। मुरली में बाबा ने कहा है जो पावन आत्मा है केवल और केवल वही मेरे साथ उस देश में चल सकती है। तो पहली तैयारी है पवित्रता की, पहली तैयारी है, पहली यात्रा है सिंधवाद की, पहली पवित्रता की। वो जहाज में बैठा हुआ है और सिंधवाद जा रहा है, पहली बार वो इस समुद्र यात्रा पर है, नीला आकाश नीला समुंदर। कई दिनों तक तो वो देखते ही रहता है, फिर बाद में थोड़ा उब जाता है और फिर उसकी आंखें किसी द्वीप की तलाश करती है और अचानक एक द्वीप नजर आता है और इतना सुंदर वो टापू होता है, सभी कहते हैं कि हमें यहाँ रुकना चाहिए और वो जहाज उस द्वीप के पास आकर रुकता है। सभी यात्री उतरते हैं, द्वीप पर चढ़ते हैं और बहुत सुनहरा सुहावना मौसम होता है। वहां पर वो लोग आग जलाते हैं भोजन के लिए कि अचानक ही वो द्वीप हिलने लगता है, पता चलता है कि वो द्वीप नहीं है परंतु एक बहुत विशाल सी मछली है वेल नाम की, उसकी वो पीठ है, उस पर पेड़ भी उगाए हैं। ऐसी अजीबोगरीब कहानियां उसमें है। उन अजीबोगरीब कहानियों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम कुछ और बात निकालेंगे इससे। तो वो हिलने लगता है, सारे यात्री भागते हैं जहाज की ओर और जहाज में बैठ जाते हैं, परंतु सिंधवाद एक अकेला बच जाता है। और वो जैसे ही मछली उठती है और डुबकी लेती है, सिंधवाद गिर जाता है और ऐसे वैसे खुद को बचाते 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 किसी तट पर जा गिरता है। वहां से उसकी मुलाकात दिखाया है कुछ सिपाहियों से होती है, सिपाही उसे राजा के पास ले जाते हैं, राजा उसके साथ दोस्ती करता है और वहां वो लोग रहते हैं। और कुछ दिनों के बाद फिर से वही जहाज जो कि खो गया था उसका, वो वहां आता है और वो अपना सामान फिर लेता है, बहुत सारा धन कमाता है और फिर घर वापस आता है। ये सिंधवाद की पहली यात्रा है। हमने बात की थी यह यात्रा पवित्रता की यात्रा है, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की इस यात्रा में ऐसे बहुत से टापू आएंगे, ऐसे बहुत सारे संबंध आएंगे जो हमको लगेगा कि ये पवित्र है, जो हमको लगेगा इसमें पवित्रता है, परंतु वो पवित्रता ना होकर एक क्या होगा, धोखा होगा। वो संबंध मोह के संबंध है और हमने उसे नाम पवित्रता का या प्रेम का दे रखा है और वो मोह वासना को पैदा करेगा और वासनाओं से व्यक्ति काम में घसीटा जाएगा। तो जाने की संपूर्ण सबसे पहली तैयारी है इस यात्रा में उन सारी चीजों को परख लेना जो पवित्रता के अंश है। हमको लग रहा है जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे संबंध संपर्क है, जिनको हमने सेवा का नाम ऊपर से दे रखा है, परंतु अंदर से यह देह है और इस देह में जन्म जन्म के विकार है। यदि पवित्रता की वह साधना नहीं की गई है, यदि ब्रह्मचर्य का वो बल आत्मा में नहीं है, तो इस तरह से बहुत सारे धोखे हो सकते हैं। वो टीवी हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, वो टापू इंटरनेट हो सकता है और उस पे हम बैठ जाएंगे और सोचेंगे कितना सुंदर यह द्वीप है, यह आइलैंड कितना अच्छा है, और जब वो मछली उठेगी हम डूब जाएंगे, गिर जाएंगे। और एक बार पवित्रता की अवस्था से ब्राह्मण आत्मा गिरती है तो उसका उठना मुश्किल है, और यदि बार बार गिरती है तो फिर क्या होता है, आत्मविश्वास खो जाता है। फिर ये पवित्रता की बातें केवल और केवल सैद्धांतिक, केवल और केवल थ्योरेटिकल रह जाती है। केवल पढ़ रहे हैं रोज मुरली में, तुम्हें पावन बनना है, तुम्हें पावन बनकर घर चलना है, योगी बनो, पवित्र बनो, केवल शब्द मात्र है और यहाँ पर दूसरी ओर बार बार ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, बार बार देह खींच रहा है और बार बार दृष्टि देह की ओर आकर्षित हो रही है। सबसे पहली शर्त है घर जाने की संपूर्ण पवित्रता, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता, वृत्ति की पवित्रता, संकल्प की, स्वप्न की, वृत्ति की, वाइब्रेशंस की, संबंध की, संपर्क की। क्या मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति ऐसी पवित्र हो चुकी है? यदि नहीं तो वो कौन से कारण है, उन्हें ढूंढना है। यदि नहीं तो क्यों, कौन से वो फैक्टर्स है, ट्रिगर्स है, फिलिप्स है, उत्तेजनाएं हैं, वासनाएं हैं, दृश्य है, आवाजें है, स्पर्श है, संबंध है, संपर्क है, कॉन्टैक्ट है, रिलेशंस है, व्यक्ति है, वस्तु है, जो मन में वासनाओं को जन्म देता है। सिंधुबाद की दूसरी यात्रा, सिंधुबाद घर लौटता है, सोचता है अब क्यों जाऊं, कितना खतरा है उस जाने में, परंतु पता नहीं कुछ दिनों के बाद फिर से अस्वस्थ हो जाता है, फिर से जाने का उत्साह आता है। हिंदबाद पूछता है सिंधबाद से, आप बार बार जाते हो क्या, आपको कभी ऐसा नहीं लगता था, इतना खतरा क्यों मोल लेना? सिंधबाद कहता है, परिस्थितियां अगर आनी है तो यहां पर भी आ सकती है, तो क्यों ना जाऊं, परिस्थितियां छोड़ने वाली नहीं, हिसाब किताब तो कहीं पर भी नहीं छोड़ेगा, चाहे घर छोड़ के संन्यास ले लो, चाहे कहीं दूर हिमालय के गुफा में बैठ जाओ, बीमारी जो यहां आना है वहां पर भी आएगी। जिस व्यक्ति के द्वारा हिसाब किताब चुकता होना है वो जंगल में भी प्रकट हो जाएगा किसी और रूप में, कोई छूट नहीं सकता। न स्थान बदलेगा, अव्यक्त महावाक्य, न स्थान बदलेगा, न व्यक्ति बदलेंगे, न परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना होगा। जिस स्थान पे अब है सोचते हैं इससे हटकर उधर चले जाए तो, इस ऑफिस से, इस सेंटर से, इस घर से, वो सेंटर, वो घर, वो ऑफिस थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। सिंधबाद अपनी दूसरी यात्रा का वर्णन करता है, फिर से जहाजी यात्रा, फिर से भव्य जहाज, फिर से उस यात्रा में बहुत सारे यात्री और सिंधबाद का अपना सामान और जहाज समुद्र से गुजर रहा है कि अचानक तूफान आता है और तूफान से वो नाव एक चट्टान से टकराती है और चूर चूर हो जाती है। और सिंधबाद जब उठता है पाता है एक निर्जन, एक वीरान से टापू पर है और वहां पर वो जाता है और थोड़ी ही देर में पाता है वो तो बेहोश पड़ा रहता है, पूरा मकड़ी का जाल ने उसे घेर लिया है। बहुत मुश्किल से जब वो उठता है और देखता है कि एक मकड़ी आ रही है, बहुत विशाल काय मकड़ी, वो अपना चाकू निकालता है और उस जाल को भी तोड़ता है और उस मकड़ी को भी मार देता है। ऐसी अजीबोगरीब कहानी है, कितनी सत्य है किसी को पता नहीं, परंतु वर्णन इसका हर जगह पर है। वहां से छूटता है और जाता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा अंडा दिखता है उसे, वो अंडे के पास देता जाता है तो एक बहुत गरुड़ जैसा पक्षी जिसे रॉक कहते हैं उस देश में, वो आता है और उसको पकड़ लेता है वो सिंधबाद उसके पैर, और वो पक्षी उसे आकाश में ले जाता है और वहां से गिरा देता है एक बिल में जिसमें बहुत सारे सांप होते हैं। सिंधबाद वहां फंस जाता है, सांपों के बीच पर देखता है वहां बहुत सारे हीरे भी है, बहुत सारे हीरे ले लेता है और फिर उस बिल में, उस गड्ढे में ऊपर से कुछ तो व्यक्ति मांस डाल रहे होते हैं जो कि वो सांप खा रहे होते हैं, और कुछ कुछ मांस को वो हीरे लगकर ऊपर जा रहे हैं। तो सिंधबाद को लगता है शायद कोई व्यक्ति ऊपर है जो ये हीरों की इस तरह से हीरों को नीचे से ले रहे हैं। वो उन व्यक्तियों को आवाज देता है और उनके उस रस्सी को खींचकर ऊपर आ जाता है, बहुत सारे हीरे उसे मिल जाते हैं। ये उसकी दूसरी यात्रा है। आज की मुरली से दूसरे नंबर की तैयारी घर जाने के लिए समाने की शक्ति। बाबा ने कहा है तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, समाने की शक्ति। किसको समाना है, जो विस्तार करके रखा है उसको समाना है। कौन सा विस्तार, पांच प्रकार का विस्तार बाबा ने बताया है। मेरा सेंटर, मेरी सेवा, मेरे जिज्ञासु, मेरा लौकिक कार्य, मेरा लौकिक परिवार। ये पांचों भी सिंधबाद की उस कहानी में, सिंधबाद सबसे पहले मकड़ी की एक जाल में फंस जाता है। मेरा लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार में आ गए, परंतु उस परिवार का अभी भी बहुत ज्यादा मोह है। बाबा ने कहा है तोड़ निभाओ, परंतु तोड़ तो निभा रहे हैं परंतु मोह बहुत है। तोड़ निभाने के नाम पर अपने मोह की भी तृष्टि हो रही है, तृप्ति कर रहे हैं। वो भी एक जाल है, जैसे वो भी एक मकड़ी का जाल है। वहां से व्यक्ति छूटता नहीं तो वो गरुड़ जैसा पक्षी उसे पकड़ लेता है। मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी सेवा, मेरा कार्य। मुरली में बाबा ने आगे कहा है जहां मेरे का भाव होगा तो जा नहीं सकेंगे। और यदि कोई आत्माओं को लाते हो, आत्माओं का गुलदस्ता लाते हो, और उसमें भी अगर ये कहते हो कि मेरा गुलदस्ता सबसे अच्छा है, तो क्या कर रहे हो, इसे उन आत्माओं को वंचित कर रहे हो बेहद के अधिकार से। दुखमयी विलाप, दुखमयी दिल का विलाप, वो उलाना देंगे। जिसको हमने ज्ञान दिया, जिसको हमने कोर्स कराया, जिसको हमने मधुबन में लाया, जिसका हम कल्याण करने के निमित्त बने, जो हमने प्रदर्शनी लगाई थी और जो उस प्रदर्शनी के द्वारा ज्ञान में आए थे, और हमारे अंदर ये भाव है मैंने किया, ये मैंने किया, इसको मैंने पालना दी, इस कन्या को मैंने तैयार किया, इस कुमार को मैं पालना दे रहा हूं। आत्माएं सर्वज्ञ नहीं, सागर नहीं, किसके लिए कहा बाबा नहीं है, इधर वालों के लिए या उधर वालों के लिए, किसके लिए? जो कह रहा है इनकी पालना मैं कर रहा हूं, मैं हूं इनके लिए, इसके लिए ये लोग हैं, अगर मैं ज्ञान ना देता तो ये ज्ञान में ना आते। बाबा कह रहे हैं आत्माएं सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ बाप है। तो जैसे वह सिंधबाद मकड़ी के जाल में फंसता है, फिर वहां से वो गरुड़ पक्षी उसे पकड़ लेता है, और वहां से फिर सांपों के बीच में चला जाता है, परंतु अपनी बुद्धि से, अपनी युक्ति से हर बार वो छूटता है। ये भी ऐसे ही जाल है। बाबा कह रहे विस्तार को क्या करो, सार में लाओ। ये जो विस्तार कर रखा है, अगर ऐसा विस्तार है तो दूसरी शर्त क्या है, वापस जा नहीं सकेंगे। तो चेक करना है कि मेरा और मैंने कहां कहां विस्तार कर रखा है, कहीं मेरे का भाव तो नहीं, या वास्तव में कुछ हम कर रहे हैं संगम पर। बाबा ने कहा है मैं, तुम मेरी भुजाएं हो, तो भुजा अपने आप काम करती है क्या? विदेश में, ब्रिटेन में वर्ल्ड वॉर टू, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मन ने बहुत सारे ब्रिटेन में बॉम्ब फेंके थे। उस बॉम्ब में एक जीसस क्राइस्ट का पुतला था, वो टुकड़े टुकड़े हो गया। जीसस क्राइस्ट का एक पुतला, लुफ्टवैफ बॉम्बिंग्स जिसको कहते हैं शायद, तो उस बॉम्बिंग में जीसस क्राइस्ट का एक पुतला था, पूरा टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के कई सालों के बाद लोगों ने वो टुकड़े एकत्र किए, यहां तक कि जर्मन के भी लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोगों ने ऐसा किया तो हम इस पुतले को हम बनाएंगे। अभी वो अपने देश से मूर्तिकार लेकर आते हैं, जितने हो सके सारे टुकड़े जमा किए जाते हैं, सारा एक फिर से वो पुतला तैयार हो जाता है जीसस क्राइस्ट का, सब सारे टुकड़े मिल जाते हैं, परंतु ये जो हाथ है, बाहें तो मिल जाती है, आर्म और फोरआर्म मिल जाता है, परंतु जो हाथ है वो नहीं मिल पाते। तो कई लोग कहते हैं कि मूर्तिकार नए हाथ बनाए,
पर कई लोगों का मानना होता है नहीं, जो ओरिजिनल मूर्ति है वही रहनी चाहिए क्योंकि हमारी भावनाएं जुड़ी है उस मूर्ति के साथ। तो एक बहुत चतुर मूर्तिकार होता है, वो हाथ तो नहीं लगाता, नहीं ढूंढ पाता है, परंतु उस मूर्ति के नीचे एक चीज ऐसी लिख देता है जो हाथ से भी अधिक सुंदर होती है, और वो ऐसी वस्तु लिखता है, वो लिखता है यू आर माई हैंड्स। जीसस क्राइस्ट कह रहा है मेरी तुम, मेरे हाथ तुम हो। भारत ने सहस्त्र बाहु कहा है भगवान को, जिसकी हजारों भुजाएं हैं। आई डोंट हैव हैंड्स, यू आर माई हैंड्स। इतनी सुंदर बात वो मूर्तिकार लिख देता है वहां पर। बाबा क्या कहते हैं, तुम कौन हो, मेरी भुजाएं हो। सिंधवात की तीसरी यात्रा, कई दिन घर रहता है और फिर समुद्र यात्रा में जाता है, और फिर ऐसा ही एक तूफान आता है, और ऐसे ही तूफान में फिर से सारे यात्री इधर उधर बिखर जाते हैं, कुछ यात्री बच जाते हैं जिसमें सिंधवात भी होता है। फिर से एक नए द्वीप के पास पहुंचते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि हम बच गए, परंतु थोड़े ही देर के बाद खुशी दुख में बदली हो जाती है, क्योंकि देखते हैं ये तो वही टापू है जहां पर लंबे लंबे बाल वाले लोग रहते हैं और जो कि मनुष्य को खा जाते हैं। तो वहां से वो लोग बड़ी मुश्किल से छूटते हैं, एक दूसरी जगह जाते हैं। वहां पर एक किला होता है और वहां एक बहुत विशालकाय राक्षस बताया है, जिसकी अलग अलग किताबों में अलग अलग रीति से वर्णन है, वो ऐसा है वो वैसा है, पर सिंधबाद वहां पर वो जो राक्षस होता है उसकी सीधी आंख में वार करता है और उसे मार देता है बड़ी युक्ति के साथ। वहां से निकलते हैं, एक दूसरी जगह पहुंचते हैं, वहां बड़े बड़े सांप होते हैं, वो उसके दोनों तीनों साथियों को खा लेते हैं। सिंधबाद बड़ी युक्ति से फिर से बच जाता है और वहां से छूटता है। फिर एक दूसरा नाव उसे मिलता है, बहुत सारा धन कमाकर वापस घर आता है। तीसरी यात्रा, घर जाने की तैयारी में तीसरे नंबर की पॉइंट है समेटने की शक्ति। किसको समेटना है, बाबा ने कहा है प्रवृत्ति को समेटना है। पांच प्रकार की प्रवृत्ति बताइए, कौन कौन सी? देह की प्रवृत्ति, दूसरी लौकिक प्रवृत्ति, तीसरी सेवा की प्रवृत्ति, चौथी कमजोरी के संकल्पों की प्रवृत्ति, और पांचवी कमजोरी के संस्कार की प्रवृत्ति। सिंधवात उतरता है और वहां पर ऐसे व्यक्ति होते हैं अजीबो गरीब, और उनके बीच से बाकी लोग फंस जाते हैं, वो छूट जाते हैं। बाद में एक राक्षस के मुंह में हाथ में आ जाते हैं, वहां से एक सांप, एक संकट जाता है दूसरा। ये सारी प्रवृत्तियां भी उन अजीब गरीब लोगों की जैसी है। देह की प्रवृत्ति, जब तक इस देह की प्रवृत्ति में फंसे हैं घर वापस जा नहीं सकेंगे। बाबा ने शब्द कहा है समेट लो, उदाहरण दिया है एक मुरली में, जैसे तुम एक घर से दूसरी घर जाते हो तो क्या करते हो, सामान को समेटते हो, और विस्तार कर रखा है इस प्रवृत्तियों का। देह की प्रवृत्ति, देह के धर्म, देह की इच्छाएं, देह की तृष्णाएं, देह के की भाषा, देह का देश अटैचमेंट है, जिस देश से आए हैं, जिस शहर से आए हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, सबसे अटैचमेंट है। भारत पाकिस्तान की मैच हो जाए और भारत जीत जाए और दूसरा देश हार जाए तो खुशी हमको होगी, इसका मतलब हम केवल भारतीय हैं। बाबा ने क्या कहा है, तुम हो विश्व कल्याणकारी, सभी देश हमारे हैं, सभी भाषाएं हमारी है, तो कहां हद में हम फंसे हैं, इस हद से भी बाहर। देह की प्रवृत्ति, लौकिक प्रवृत्ति, संसार की प्रवृत्ति, संसार के आकर्षण, संसार के साधन, संसार के सुख, क्या संसार के सारे सुख एक तरफ और परमात्मा सुख एक तरफ, कौन से बड़े हैं? फिर भी तो हमारी दौड़ संसार की ओर है, जबकि श्रेष्ठ ज्ञान मिल गया है, फिर भी हम देखते हैं कि कितने ही ब्राह्मण आत्माएं अब भी उसी संसार में इस तरह फंसे हैं, जैसे कि ज्ञान में चलना अर्थात सुबह मुरली क्लास में जाना फुल स्टॉप, थोड़ी बहुत सेवा कर लेना और फिर से संसार में डूबे रहना, क्या इसी की परिभाषा ज्ञान में चलना है? लौकिक प्रवृत्तियों में फंसे हैं। तीसरी सबसे सूक्ष्म बात, सेवा की प्रवृत्ति। बाबा ने कहा सेवा करो परंतु कमल को ना भूलो, सेवा करो परंतु घर जाने की तैयारी को ना भूलो, सेवा करो परंतु सेवा के साधनों में ये जो न्यारे और प्यारे बनने का साधन है इसको ना भूलो, न्यारे बनने की जो खूबी है उसको ना भूलो, इसके लिए सेवा से भी न्यारे। इतना उसमें फंस नहीं जाओ कि भूल ही जाए ज्ञान और योग को। तो ये थी तीसरी यात्रा। चौथी यात्रा और फिर उससे भी सूक्ष्म था, संकल्प और संस्कार। जो रहे हुए संस्कार और रहे हुए संकल्प है कमजोरी के, उससे आकर्षण, उसको अभी तक समेटा नहीं है। एक आदत ऐसी है वो जो चालू है, पता है ज्ञान में ये सबसे बड़ी बाधा है, पर छूट नहीं पा रहे उस एक आदत से, उस पर काम करना है। और अब यहां जब आए हैं आप सभी मधुबन की इस पावन भूमि पर, बाबा ने आज कहा है सेवाधारियों को तीन प्रकार के भाग्य है, एक तो चांस मिला यहां आने का, दूसरा वातावरण यहां का, और तीसरा इनकम, कमाई यहां हो रही है। कहा है ना सेवाधारियों से मुलाकात में, मुरली पड़ी है ना सबने कि नहीं, कि खाली सुनी है। चौथी यात्रा, फिर सिंधबाद जहाज में बैठता है, फिर जहाज चालू होती है कुछ महीनों के बाद, और फिर जहाज की यात्रा करता है, फिर से तूफान आता है, फिर से सिंधबाद एक टापू पर पहुंचता है, और ये एक विचित्र टापू होता है। इसको हम जोड़ेंगे जो चौथी बात बाबा ने मुरली में कही है, वो है बैलेंस। किस चीज का बैलेंस? न्यारे और प्यारे बनने का बैलेंस। तो सिंधबाद एक टापू पर कुछ लोगों के साथ पहुंचता है, बाकी तो सब मर जाते हैं, और वहां पर एक नरभक्षी लोग होते हैं, उनके बीच वो पहुंचता है, और वो नरभक्षी लोग उनका बहुत सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, उन्हें ऐसी कुछ जड़ी बूटियां खिलाते हैं कि उनको मोटा बनाने के लिए, ताकि उनको बाद में खा सके। पर सिंधबाद भाप लेता है और वो नहीं खाता, बाकी सब लोग खाते, मोटे हो जाते और एक एक करके सब मर जाते हैं। एक रात को सिंधबाद वहां से भाग जाता है, कहीं और पहुंचता है, किसानों को मिलता है, वहां से दिखा एक राजा के पास ले जाते हैं, राजा से उसकी मैत्री होती है, शादी होती है, शादी के बाद में पत्नी मरती है, रिवाज ऐसा होता है कि पत्नी जब मरेगी तो उसी के साथ उसे दफनाया जाएगा, उसे दफनाया जाता है, वहां से वो एक समुद्री चूहे की मदद से बाहर निकल जाता है। ऐसी ये अजीबोगरीब कहानी है। हमारा चौथा पॉइंट है न्यारा और प्यारा। सारे जो साथी होते हैं सिंधबाद के वो फंस जाते हैं, भाप नहीं पाते उन लोगों को, सिंधबाद एक ही है जो न्यारा रह पाता है। सारे मोह में फंस जाते हैं, जो जो अच्छा हमको खिलाते हैं, कुछ जड़ी बूटियां भी खिलाते हैं स्तुति की प्रशंसा की, ऐसे लोगों के बीच में हम क्या हो जाते हैं, ज्यादा प्यारे बन जाते हैं, ऐसी सेवाओं में ज्यादा प्यारे बन जाते हैं और न्यारापन भूल जाता है। परंतु दूसरी जगह पर सिंधबाद खुद फंस जाता है पत्नी के मोह में, और फिर बड़ी मुश्किल से छूटता है। तो जाने के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट बाबा ने जो कही है चौथी, वो कौन सी है? सेवाएं सब करो परंतु न्यारापन ना छूटे। ये याद रहे कि हमें ये सब कुछ छोड़कर जाना है, ये याद रहे कि ये कुछ भी हमारा नहीं है, वैराग लाएगा यह भाव। सिंधबाद की पांचवी यात्रा, और पांचवा हमारा पॉइंट है डबल लाइट स्थिति। बाबा ने कहा है डबल लाइट स्टेज, उसको कहा है ये उड़न आसन है, जिसमें ये उदाहरण दिया है। एक और उदाहरण यहां पर जिससे हमने क्लास की शुरुआत की थी, जैसे कोई मरता है पहले ही तुम तैयारी कर लो जाने की। तो सिंधबाद की पांचवी यात्रा में सिंधबाद जाता है, फिर से तूफान आता है, फिर से सारे यात्री इधर उधर बिखर जाते हैं, और फिर से वो एक नए द्वीप पर पहुंच जाता है, और यहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति उसे देखता दिखता है। वो उस बूढ़े व्यक्ति को कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम कौन हो? बूढ़ा व्यक्ति बात नहीं करता, और उसे लगता है शायद ये इधर से उधर जाना चाहता है, नदी को पार करना, तो उस बूढ़े व्यक्ति को अपने सिर पर बिठा लेता है, और बाद में जब पार होता है तो कहता है अब उतरो, तो बूढ़ा व्यक्ति उतरने का नाम नहीं लेता है। जहां सिंधबाद जाता है वो बूढ़ा व्यक्ति पकड़ लेता है उसको, बाद में उसे पता चलता है ये वही तो भूत है, जो कंधों पर बैठने वाला है। अब जिसने इसको पकड़ा वो उसको छोड़ता नहीं है, दिन रात कई महीने गुजर जाते हैं सिंधवाद उसी को लेके घूमता है फिरता है, वो भूत उसके सिर पे बैठा रहता है, वो सोचता है अब मैं क्या करूं कैसे इससे छुटकारा पाऊं। तो वहां पर वो एक सिंधवाद एक शराब बनाता है, बहुत सारे फल लेता है उनको रख देता है, कुछ दिनों के बाद वो शराब बन जाती है, खुद पीता है और वो शराब थोड़ी सी उसको भी पिला देता है ताकि उसको टेम्पटेशन देता है, तो वो भूत भी पीता है, उसकी पकड़ थोड़ी ढीली होती है, फिर वो भूत को नीचे गिराता है और उसे मार देता है। ऐसी अजीबोगरीब ये पांचवी कहानी बताई है। वो भूत कौन है? हम बात कर रहे हैं जाने के लिए डबल लाइट स्थिति चाहिए, और जिसके सर पर देहभान का भूत बैठा है वो देह वो डबल लाइट कैसे हो सकेंगे? दिन रात जहां हम जाते हैं वो देहभान साथ जाता है, घर ऑफिस सेंटर मधुबन भी, वो भूत पकड़े ही रहता है, छोड़ता नहीं उसको, वो आराम भी करता है तो भी वो भूत उसे छोड़ता नहीं है। और जिसने जिसको उस भूत ने एक बार पकड़ लिया कोई छूटता नहीं है उसमें, बाद में उसे वो एक शराब पिलाता है, खुद भी पीता है और उसे भी पिलाता है। ईश्वरीय प्रेम की ऐसी शराब जब हम पिएंगे तभी ये भूत छूट सकेगा, नहीं तो ये भूत छूटने वाला नहीं है। कितना भी स्वयं प्रयत्न कर लो जब तक परमात्मा प्रेम नहीं है, ईश्वरीय नशा नहीं, रूहानी मस्ती नहीं, इलाही मस्ती नहीं, नारायणी नशा नहीं, ये भूत जाने वाला नहीं है। पांचवी पॉइंट कौन सी हुई? डबल लाइट स्थिति, स्वयं को हल्का रखने के लिए बार बार अशरीरीपन का अभ्यास, बार बार देह से स्वयं को अलग करने का अभ्यास चाहिए। यदि हमारी दिनचर्या में ऐसा अभ्यास बार बार नहीं हो रहा है तो हम उस भूत को ही लेकर घूम रहे हैं सब जगह, बहुत परेशान करता है, छोड़ता नहीं है बिल्कुल, ऐसे पैर पकड़ लेता है। छठवां अंतिम वाहन कर्मातीत स्थिति, सिंधबाद की छठवीं यात्रा। सिंधबाद अपने जहाज में बाकी जहाजियों के साथ बैठता है, यात्रा चालू होती है, चट्टान से नाव टकराती है, सब इधर उधर बिखिर जाते हैं और वो एक स्थान पर आ जाता है। उसके साथ ही कुछ उसके साथ होते, भोजन सारा समाप्त तो हो जाता है, एक महीने तक भोजन चलता है, बाद में सब मर जाते हैं भोजन न मिलने की वजह से। सिंधबाद अकेला जीवित रहता है, देखता है एक जगह पर एक नदी चट्टान के अंदर जा रही है, वैसे तो नदी चट्टान से निकलती है पर वो देखता है चट्टान के अंदर एक नदी जा रही है, उसमें बैठ जाता है एक नाव में और अंदर पहुंचता है, सेरनद्वीप में पहुंचता है, श्रीलंका सिलोन बगदाद से चालू होकर, और वहां पर उसकी मुलाकात उस राजा से होती है और राजा को अपने सारे कारनामे सुनाता है। राजा इतना प्रसन्न होता है, कहते हैं मुझे लिखना है ये सब तुम्हारी जो बातें, और वो सारा लिखता है और जाते समय उसे बहुत सारे सौगात देता है और सिंधबाद वापस आता है। ये सिंधबाद की छठवीं यात्रा। इस यात्रा में जितना भोजन उसके पास होता है या सबके पास होता है सारा समाप्त हो जाता है, जैसे ही साधन समाप्त हुए बाकी मर जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण निर्भर उन साधनों पर थे, क्योंकि सारी रस्सियां उन बंधनों में थी। कर्मातीत स्थिति यह अंतिम वाहन है, इसी वाहन में बैठकर हम बाप के साथ ऊपर जा सकेंगे, इसलिए किसी पर भी हम निर्भर ना हो, व्यक्ति वैभव इस संसार के साधन टीवी मोबाइल ये सारे साधन आज है कल नहीं रहेंगे, आज नेट चालू है कल बंद हो जाएगा तो बेचैनी ना हो, आज बात कर सकते हैं फोन से कल फोन ही बंद हो जाएंगे। बाबा ने कहा है सारी रस्सियां जो है वो छूटी हुई हो, वही कर्मातीत अवस्था, किसी पर भी अवलंबन निर्भर ना हो, अकेले आई है आत्मा, आत्मा को अकेला जाना है, पुरुषार्थ में भी कोई ऐसा ना हो कि उस पर हम निर्भर हो जाए, पुरुषार्थ में भी एक अकेला, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन इंग्लिश में कहते हैं, ये यात्रा जो है वो अकेले की यात्रा है, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, प्लेटोनियस ने कहा है कहीं। तो ये सिंधवाद की छठवीं यात्रा और फिर है सातवीं यात्रा और सातवां हमारा पॉइंट है सेवा, जिसका बाबा ने आज की मुरली में बहुत विस्तार किया है। सिंधवाद अपनी सातवीं यात्रा पर निकलता है, बहुत अच्छे से पहुंच जाता है, यहाँ कोई तूफान नहीं आता, क्योंकि वहां का जो खलीफा होता है बगदाद का, वो कहता है कि उस राजा ने सिलोन के सरनदीप के बहुत सारी सौगात भेजी थी, अब तुम मेरी तरफ से उनके लिए सौगात ले जाओ। सिंधवाद जाता है, एक हफ्ता रुकता है, वापस जब आता रहते हैं तो समुद्र डाकू उसे आक्रमण करते हैं और वो पकड़ा जाता है, उसे बेच दिया जाता है गुलाम परंपरा के अनुसार, और उसका वो मालिक थोड़ा अच्छा होता है, उसे काम देता है हाथियों को मारने का, हाथियों को मारने का, फिर हाथियों को दफन करते हैं वो लोग, उसके हाथ दांत और हड्डियों को बेचते हैं, ऐसा वो काम होता है। पर एक दिन जब वो उस मचान पर बैठा होता है सिंधवाद, एक हाथी उसे बहुत हिलाता है, नीचे गिराता है और एक गड्ढे में डाल के डाल देता है लेके जाके, और उस गड्ढे में सिंधवाद देखता है यहाँ तो बहुत सारे हाथी के कंकाल है, हड्डियां है और दांत है, वो सारे लेता है, वापस आता है, अपने मालिक से कहता है मैं आपको बता सकता हूँ ऐसी जगह, पर एक शर्त पर, आप किसी भी हाथी को आज से मारना नहीं। तो मालिक मान लेता है और उसे वो राज बताता है, मालिक उसे गुलामी से भी मुक्त कर देता है। तो एक रीति से सिंधवाद उन सभी हाथियों की सेवा कर देता है, सबको मरने से बचाता है। आज की मुरली में बाबा ने अंतिम पॉइंट कही है सेवा की, जब तक ये सेवा न होगी तब तक तुम ऊपर जा नहीं सकते। उसका विस्तार हम करेंगे फिर से एक बार रिवाइज। सबसे पहली पॉइंट संपूर्ण पवित्रता, दूसरी पॉइंट समाना, जो भी विस्तार किया है उसे समाना, तीसरी पॉइंट समेटना, चौथी पॉइंट बैलेंस रखना, पांचवी पॉइंट डबल लाइट स्थिति, छठवीं पॉइंट अंतिम वाहन कर्मातीत अवस्था का, कर्म के बंधनों से परे, और सातवीं पॉइंट है सेवा। बाबा ने कहा आत्माओं की सेवा करो, केवल क्वालिटी से नहीं होगा, क्या चाहिए क्वांटिटी उसमें भरो। क्वालिटी तो जैसे कि पत्ते हैं, क्वांटिटी फल है, एक तो केवल श्रृंगार है परंतु दूसरा सदाकाल का जीवन का सोर्स है। आत्माओं को क्या क्या करो, जो आत्माएं हैं उन्हें शक्तिशाली बनाओ, सिद्धि स्वरूप बनाओ। आत्माओं को क्या करो, उमंग उत्साह में लाओ, आत्माओं को महावीर बनाओ और आत्माओं को अंगद बनाओ। क्या करो, अंगद बनाओ और महावीर बनाओ, गुणमूर्त बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ, ये सारी बातें करो, विश्व की स्टेज पर लाओ, सब आत्माओं के लिए करना है। और उसके लिए उनको अगर विघ्न विनाशक बनाना, हमें स्वयं ऐसा बनना होगा। क्लास की शुरुआत में हमने जो कमेंट्री कराई थी उसमें हमने बाबा से कुछ वरदान लिए थे, कौन से वरदान थे, विघ्न विनाशक भव, रोज सुबह सूक्ष्म अवतन में जाकर जैसे बाबा ने हाथ रख दिया और वरदान ले लिया, शक्ति संपन्न भव, आज की मुरली में वरदान है विजयी भव, सारे वरदान ले लेने हैं। बाबा ने सेवाधारियों से मुलाकात की, उन्हें भी यही बात कही है कि दूसरों को ना देखना, सी फादर एंड फॉलो फादर। दो प्रकार के सेवाधारी, एक तो परिचय देने वाले और दूसरे यज्ञ में सेवा करने वाले, तीन प्रकार का उनका भाग्य, और आत्माओं की सेवा करनी है। तो टोटल ऐसी सात तैयारियां चाहिए, किस लिए, वापस घर जाने के लिए। जब तक ये तैयारियां नहीं होगी हम वापस घर नहीं जा सकेंगे। ऐसे बाप समान आत्माओं को, ऐसे समीप आत्माओं को, ऐसे बाप समान सेवा करने वाले, सेवा करते हुए सेवा से न्यारे और साथ चलने के प्यारी आत्माओं को, ऐसे अंतिम स्थिति के एवर रेडी आत्माओं को, ऐसे सेवाधारी के साथ साथ शक्तिशाली बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे विधि के साथ साथ सिद्धि से सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे बेहद के बाप के, बेहद के वर्षे के निमित्त बनाने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते ओम शांति।